जिंदा है तेरा नाम मोहम्मद अली नकवी, जारी है तेरा काम मोहम्मद अली नकवी।
औजु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्म रब्बिश्शहदा वस्सालिहीन। सबसे पहले जिस मुनासबत से आज वर्सी शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी के हवाले से और चहलों में मुदाफीन हरम के हवाले से हम मौजूद हैं, तो मैं इमाम वक्त हुज्जतुल कायम और उनके नायब हक्का वली फ़कीह अमर मुस्लिमीन नायतुल्लाह सैयद अली खामनाई की खिदमत में और तमाम अहबाब की खिदमत में ताज़ियत अर्ज़ करता हूँ। और उसके बाद मेरा सलाम हो आप जवानान इमामिया पर, इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो जवान जिनके बारे में सैयद रहबर फरमाते हैं कि ISO के जवान मेरी आँखों का नूर हैं। आप जवानों ने सरजमीन पाकिस्तान पर शहदा की रविश को ज़िंदा रखा हुआ है। आज 25 साल गुजरने के बावजूद हम खानवादे शहदा को ये एहसास रहता है कि शहदा का रास्ता ज़िंदा है। तो अजीज़ान, आप जवानान इमामिया हैं जो इस बात के अमली सबूत हैं और अमली रोल मेकर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो आप तमाम दोस्तों पर सलाम। मैं मुख्तसरन सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर 4 क्वालिटीज़ इन शहदा की और बिलखसूस शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी की बयान करूँगा और उसकी रोशनी में कोशिश करूँगा कि आप अपने जो एज फेलोज़ या मेरे साथ की हमअसर लोग हैं उनको कुछ एडवाइस दूँ कि हमने इसके ऊपर चलना है। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अजीज़ान, ये सारे शहदा, इनके अंदर जो एक कदरे मुश्तरक नज़र आती है हम सबको, वो सबसे पहले इन्होंने अपना हदफ़ डिफ़ाइन किया हुआ है और वो हदफ़ बहुत बुलंदोबाला था जिसकी बिना पे आज तक ये रक्षा सितारों की तरह चमक रहे हैं। वो हदफ़ क्या था? वो एक इलाही हदफ़ था। उनका टारगेट क्या था? अपनी सारी ज़िंदगी की एफर्ट्स के अंदर क़ुर्ब खुदाबंदी। जिस तरह आगा साहब अभी शहीद कासिम सुलेमानी के वसीयतनामे से इक्तबासात सुना रहे थे कि मेरा टारगेट क्या है? खुदा का दीदार, वो दीदार जो जनाब मूसा ने जिसकी डिमांड की थी खुदाबंद मूसा से। ये तमाम शहदा अपना हदफ़ क्या रखते थे? ज़ात खुदाबंदी। खुद एग्जाम्पल देता चलूँ शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी की, घर में उनकी बेटी ने एक दफ़ा सवाल किया, बाबा आपका टारगेट क्या है, इस लाइफ से क्या अचीव करना चाहते हैं? तो कहते हैं मेरा टारगेट लिखा अल्लाह है, यानी कि सारी ज़िंदगी का हदफ इलाही था। एक बड़ा हदफ तायुन कर लिया उन्होंने। इसी हदफ के हसूल के लिए वो क्या करते रहे हैं सारी ज़िंदगी? आयमा अतहार के रास्ते पर चलते रहे। खुद हम लोगों ने, हमारी दौर का मासूम मौजूद नहीं है तो नायब मासूम जो वली फ़कीह दौर रहा है उसके रास्ते पे अमल करते रहे हैं। अपनी ज़िंदगी का मकसद ये रखा कि वो वली नायब इमाम तन्हा ना रह जाए, उसके बताए हुए रास्ते पे चलते रहें। उसकी बड़ी वाज़े मिसाल नज़र आती है, कल शबीर बुखारी साहब भी अर्ज़ कर रहे थे, जब बरातस मुशरकीन का मुजाहरा हुआ, शहीद असीर हरम कहला, इन सारी बातों के बाद जो उन्होंने एफर्ट्स की, जब उनसे सवाल किया जाता था तो उनका क्या जवाब होता था? अगर मेरे इस काम से इमाम राहिल को चंद लम्हे सुकून के मिल गए हैं तो मेरी सारी काविशें कामयाब रहीं। तो इन लोगों का मकसद, इन तमाम शहदा का मकसद क्या था? इलाही हदफ था। और उसके लिए जो इस वक्त खुदा के निज़ाम का सरकन्ना हमारे सामने मौजूद है, यानी कि वली फ़कीह दौरान मौजूद हैं, उनको उनकी आरामिश और उनके सुकून के लिए हम कोशा रहे हैं ये शहदा। तो ठीक है, तो पहली क्वालिटी हमें नज़र आ गई, आला हदफ थी। कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, ये शहदा अपनी पूरी जिंदगियों के अंदर मुतहर्रिक रहे हैं। इनकी लाइफ में आपको कहीं ब्लॉकेज या स्टॉपेज नज़र नहीं आता। उसकी एग्जाम्पल ये नज़र आती है, वो कहते हैं मैं नहीं चाहता कि बिस्तर पे खांस खांस के मरूं। वो थ्रू आउट द लाइफ متحرک رہے ہیں. خود قاسم سلیمانی کے بارے میں جیسے وصیت نامے کے جملے ہیں, میں ایک صحرا سے دوسرے صحرا جاتا رہا ہوں. کیوں؟ اپنی لائف میں کہیں بھی ان لوگوں کے سٹیسز نظر نہیں آتا, یہ لوگ رکے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں, یہ تھرو آؤٹ دا ٹائم چلتے رہے ہیں, مصروف رہے ہیں. اسی مصروفیت کے حوالے سے, متحرک پن کے حوالے سے اپنے اندر ان لوگوں نے کیا طے کیا ہوا تھا کہ اپنی ڈیوٹیز کو انجام دینا ہے. وہ ڈیوٹیز کس قسم کی ہو سکتی تھی؟ جو ان کو نظر آیا کہ اس وقت اس کام کی ضرورت ہے, ہم نے انجام دے دیا. اور بارہا شہید اپنے گفتگو کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو ڈوئیبل کام ہے وہ کرتے جائیں. دوسروں کے اوپر الزام ڈالنا آسان کام ہوتا ہے, فار ایگزامپل کہ جی ماحول سازگار نہیں ہے, وسائل نہیں ہیں, یا ایک طالب علم کے لیے یہ کہنا آسان ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں مجھے ٹیچر پڑھا نہیں رہے ہیں. شہید یہ عرض کرتے تھے اپنی گفتگو میں بارہا کہ دیکھو کیا کام آپ خود سے کر سکتے ہو. ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت آئیڈیل ماحول کریٹ ہو تو اس کے بعد کچھ کریں. فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ کے لیے یہ کام تو پاسبل ہے نا کہ یونیورسٹی میں کلاس نہیں ہو رہی, وہ لائبریری میں جا کے پڑھ لے. یا ایک شخص کے لیے یہ تو پاسبل ہے نا کہ محلے میں چار لوگوں کو جمع کر کے کوئی عالم دین نہیں آ رہا, خود دعائے کمیل کا تلاوت کرے. تو شہید جو جو کچھ خود کر سکتے تھے وہ کرتے رہتے تھے, اور ہمیشہ اس بات پہ انفیسائز کرتے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی تھرو آؤٹ ایفرٹ یہ ہونی چاہیے کہ جو کام ہم خود سے کر سکتے ہیں وہ انجام دیتے رہیں, بہت چیزوں کا انتظار نہ کریں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اچھا ایک اور کوالٹی کی طرف جب میں آپ چوتھی طرف اشارہ کروں, جو میری نظر میں ان تمام شہداء کی زندگیوں میں سب سے اہم ہدف رہا ہوا ہے اور جو باعث بنا ہے ان لوگوں کی اتنی اعلیٰ کارکردگی کا, وہ یہ چیز تھی کہ یہ تمام اشخاص شخصیت شناس اور زمانہ شناس لوگ تھے. شہید ڈاکٹر محمد علی کے بعد ایک اکثر سوال آتا ہوتا ہے کہ یار کیا ہوا معاشرے میں, وہ شخص اتنے لوگوں کو لے کے چل رہا تھا, بعد میں ہم اس طرح سے کام نہیں کر سکے. اس کی ایک بین جو عنصر نظر آتا ہے کہ شہید ایک شخصیت شناس آدمی تھے, وہ ہر بندے کا رول ڈیفائن کر پاتے تھے کہ اس بندے نے یہ کام کر سکتا ہے. اس یہ ایک بالکل فطری عمل ہے. دیکھیے اس معاشرے میں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شخص بہت اچھا ایتھلیٹ ہو. ہو سکتا ہے ایک شخص بہت اچھا ایتھلیٹ ہو لیکن اس کی میتھمیٹکس اتنی اچھی نہ ہو, اور ہو سکتا ہے ایک پروفیسر ہو بہت اچھا پڑھا سکتا ہو لیکن فزیکل فائٹ کے اندر وہ کام نہ کر سکتا ہو. تو یہ ایک فطرتاً خدا کی طرف سے انسانوں میں مختلف کوالٹیز موجود ہیں. شہید نے کیا کیا کہ تمام اشخاص کی ان کوالٹیز کو آئیڈینٹیفائی کیا. اب جب آپ آئیڈینٹیفائی کر چکے ہو کہ ایک شخص کے اندر فار ایگزامپل اے پرسن کے اندر یہ کوالٹی ہے اور بی کے اندر دوسری کوالٹی ہے, اب میں اے شخص کے اوپر کام کروں گا کہ اس کی اس کوالٹی کو اپنے پرپس کے لیے یوز کر سکوں. تو یہ چیز تھی جس نے شہید کو اتنے سارے رفقا, جو کہ بعد میں شاید اس طرح سے ہمارے ساتھ مربوط نہ رہ سکے, یا ہم اپنے لائف سے بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ نہیں چل پاتے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان سے ان کا جو ٹارگیٹڈ رول ہے وہ نہیں اچیو کر پا رہے ہوتے. ہم ان سے دوسرے کام کی طرف جب کھینچیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ اپنی پرائمری فیز کو بھی بھول جائیں گے. تو شہید نے کیا کیا, شخصیت شناسی ان کے اندر بہت زیادہ عنصر تھا. ساتھ ہی ساتھ عزیزان جو سب سے اہم چیز تھی وہ زمانہ شناس تھے. زمانہ شناس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں آج تقریباً 25 سال گزر چکے ہیں, اس وقت کے زمانے کے حوادث کچھ اور تھے, آج کے حوادث بدلتے جا رہے ہیں. ہدف وہی تھا, ایک الہی ہدف, لیکن جب جب معاشرے میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان کے اکارڈنگلی ریئیکٹ کرنا ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے. شہید کا تھرو آؤٹ یہ رہا کہ انہوں نے حالات کو انالائز کیا. انالیسس سے کیا اندازہ کیا کہ اس وقت معاشرے میں اس چیز کی ضرورت ہے تو مجھے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. आप उनकी जिंदगी को अगर देखते हो तो मल्टीपल काम करते रहे हैं। एक जगह पे वो एज ए मेडिकल प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, एक जगह पे वो एक मजालिस का एहतमाम कर रहे हैं, एक जगह पे वो मिल्ली अमूर के अंदर हर किस्म का काम कर रहे हैं, कहीं बैनर्स भी लगा रहे हैं, कहीं स्पीचेस भी कर रहे हैं। तो क्या वजह थी कि वो उस हालात के ज़माने को आइडेंटिफाई कर रहे थे और फिर उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे थे। तो अजीजान, अब हम सब पर साथ साथ मैं बहुत इस बात को फोकस करना चाहूँगा कि हमारी सब की ये जिम्मेदारी है जो शहीद का दम बनाते हैं, उनको याद करते हैं, कि हम लोग अपने ज़माने के हवादिस को समझें। अगर हम ये सोचते रहें कि डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी 25 साल पहले शहीद हो गए, वो अपना नाम बना गए, अब हम सिर्फ उनका नाम याद रख के काम कर लेंगे, तो ना, किसी भी बड़ी शख्सियत को खराज तहसीन पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उसके अफकार पे काम करें। तो उनकी फिक्र ये थी कि हमें ज़माना शनास होना चाहिए, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि आज के जिस माशरे में मैं रह रहा हूँ के मसाइल क्या हो चुके हैं। आज से 25 साल पहले के ज़माने के मसाइल कुछ और थे, इस वक्त दुनिया तगैयर कर रही है, आपके जो माशरा है इस वक्त उसके मसाइल डिफरेंट हैं, आज की वॉर डिफरेंट है, आज एक साइबर वर्ल्ड बन चुका हुआ है, आज एक बायोलॉजिकल वॉर्स चल रही है। हमें अपने ज़माने को एनालाइज करना है और इस ज़माने के मुताबिक एक्ट करना है। तो आप में से जो शख्स दर हकीकत शहीद का पैरो होगा वो होगा जो अपने ज़माने को आइडेंटिफाई करे, ना कि हम अपनी पुरानी रविशों के ऊपर चलते रहें। वो काम करने के हैं, हमारा हदफ इलाही है और हमने अपने इस दौर को आइडेंटिफाई करना है और इस दौर के मुताबिक हर पहलू पे लड़ना है, ख्वा वो एजुकेशनल ग्राउंड्स हों, ख्वा वो इंटरनेशनल रिलेशंस हों, ख्वा वो दिफाई काम हो जो करना है। मिसाल के तौर पर अगर खुदा ना खास्ता हमें ज़रूरत पड़ती है दिफाए हरम की, जैसे हमारे जवान करते रहे, ये भी शहीद की शख्सियत होगी कि हालात को आइडेंटिफाई करें, ये भी शहीद की शख्सियत होगी कि हम आइडेंटिफाई करें। हाँ, शिया इंजीनियर्स और डॉक्टर्स तो बन रहे हैं, शिया ब्यूरोक्रेट्स नहीं मौजूद इस वक्त, शिया इंटरनेशनल रिलेशंस में वीक हैं। हमें हर दौर की नीड्स को एनालाइज करते हुए काम करना है। वो शख्स जो एक जगह जमूद का शिकार हो जाए वो शहीद का पैरो नहीं हो सकता। शहीद का हकीकी पहलू वही होगा जो बदलते हुए हालात के साथ खुद को बदले। बस इस दुआ के साथ कि खुदा बंदे मुताल हमें शहीद की तरह मुतहर्रिक होने की तौफीक अता फरमाए और खुदा आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। वल्लाह, वस्सलामु अलैकुम।